Everyone.
So, Prabha Didi, as everyone knows, is now director of Gyan Sarovar. And Prabha Didi has been with Baba since 1968. She took Gyan in a city called Meerut, which is close to Delhi. And then she has actually served the Yajna in Bombay and in Madhuban. And for the last 48 years, she has been in Bharuch in Gujarat. It's a long time. So we are so happy to have her here in Gyan Sarovar now. And we'll be coming again and again. Prabha Didi, hum aapke paas abhi Gyan Sarovar, double foreigners, sab aayenge. So thank you.
Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. आप सभी प्यारे शिव बाबा के मीठे मीठे सभी ब्राह्मण कुलभूषण बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे हम सब बाबा के बच्चे हैं चाहे देश में हैं चाहे विदेश में हैं है? बाबा हम सभी बाबा एक बाप के हम सभी बच्चे हैं शिव बाबा के लिए हमेशा कहा जाता है कि शिव बाबा सर्व आत्माओं का पिता है तो सर्व में सारी विश्व की आत्माएं आ जाती हैं तो सारे विश्व के अंदर तो अनेक भाषाएं हैं अनेक रीत रिसम रिवाज अलग अलग हैं, लेकिन बाबा ने अनेक को एक बना दिया है अनेक होते हुए भी हम सभी एक बाप के बच्चे हैं और हम सबकी एक ही भाषा है कौन सी भाषा है मौन की भाषा साइलेंस की भाषा इशारों की अव्यक्त भाषा और बाबा ने हम सभी को फरिश्ता बना दिया है आप सभी फॉरेनर्स तो वैसे भी फरिश्ता लगते हो क्योंकि बाबा हम सबको फरिश्ता बनने का थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है लेकिन आप तो वैसे ही बने बनाए क्या हो फरिश्ते हो हल्के हो बहुत उड़ते रहते हो क्योंकि बाबा हम बच्चों को अभी क्या बनाने आया फरिश्ता बनाने आया है और पहले बाबा हम बच्चों को बनाता है शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से फिर बनते हैं हम फरिश्ता और फरिश्ता से फिर हम बनते हैं देवता तो बाबा हम बच्चों को देवता बनाने आए और देवताओं की आज तक भी सभी जगह पर क्या होती है पूजा होती है कभी कभी बाबा फॉरेनर्स को पूछते थे आप सभी के मंदिर हैं आप सबके मंदिर है कौन कौन से आप सभी देवता बनने वाले हैं एक ही देवता बनेंगे या वैरायटी देवता बनेंगे क्योंकि देवता एक नहीं होते देवताएं अनेक है कहते हैं ना देवता और देवताएं तो देवताएं जो है वो अनेक हैं तो हम सभी क्या बनने वाले हैं देवताएं बनने वाले और बाबा हम सबको देवता बनाने के लिए आया है तो भगवान हम सबका पिता शिव बाबा हम सबका एक ही है और हम सभी बाबा के बच्चे अनेक होते हुए भी एक हैं है ना हमारी एक ही भाषा है एक ही रस्म है एक ही रिवाज है एक ही कुल है एक ही मर्यादा है अभी भाषाएं इस समय भले अलग अलग हैं लेकिन साइलेंस की भाषा हमारे नैनों की भाषा सबकी एक है मुझे आप सबको देख करके एक बात याद आती है कि मैं एक बार कर्नाटक में गई थी मेरे को तो हिंदी आती है मेरे को और भाषाएं नहीं आती हैं तो कर्नाटक में गई, अब मेरे को कहा गया आप क्लास कराओ। तो मेरे को थोड़ा सा मन में ऐसा होता था कि ये लोग मेरी भाषा को नहीं समझेंगे तो मैं क्या क्लास कराऊंगी, थोड़ा फीलिंग हुआ। लेकिन जब मैंने क्लास कराया तो सभी की भले भाषा नहीं समझते थे, लेकिन नैनो की भाषा को हम सभी एक दूसरे की लेन देन कर सकते हैं। तो हम सभी आज भी आप सबके साथ में, भले आपकी भाषा को हम नहीं जानते, आप तो फिर भी हमारी भाषा को जानते हैं, क्योंकि आप सभी बाबा की मुरली सुनते हैं, है? तो मुरली सुनते सुनते वो भाषा कैच कर लेते हैं, करते हैं ना सभी कैच, बाबा की भाषा को सभी कैच कर लेते हैं। और फिर वो तो बाद में ट्रांसलेशन तो मिलता ही है, लेकिन बाबा क्या कहना चाहता है वो आप सभी कैच कर लेते हो, क्योंकि हमारे अव्यक्त वतन की जो भाषा है, है? वो कौन सी भाषा है? इशारों की भाषा है, है? वहाँ मुख की भाषा नहीं चलती है, वतन में इशारों की भाषा चलती है और बाबा इशारों से ही बात करते हैं। तो बाबा के इशारे को तो सभी समझ लेते हैं, बाबा कोई भाषा बोलते हैं? बाबा इशारा करते हैं और हम सभी बाबा से बातें करते हैं। आप सभी बाबा से जो भी बात करते हो कौन सी भाषा में बात करते? अपनी भाषा में बात करते, इशारे से बात करते, और बाबा आपकी भाषा सुनता है, सुनता है ना बाबा, है? और फिर आपको बाबा उसका रिस्पॉन्ड भी देते हैं। हम सभी बाबा के चित्र के सामने जाकर के बैठते हैं तो बाबा के आगे हम अपने अपने दिल की बातें रखते हैं, तो दिल की बात तो बाबा सुनता है ना, भले मुख की नहीं सुनेगा लेकिन दिल की बात बहुत जल्दी सुनाई देती है। तो हम सब बाबा को दिल की बात सुनाते हैं, इसीलिए शिव बाबा को क्या कहा जाता है? दिलवर कहा जाता है, दिल लेने वाला। आप सबने यह दिलवाला मंदिर देखा होगा ना, दिलवाला मंदिर में क्या है, वो किसका यादगार है? हमारा ही यादगार है कि शिव बाबा जो है वो क्या है? दिलवर है, दिल लेने वाला, दिलवाला है। तो हमारे दिल की भाषा को, दिल की इशारों को बाबा समझ लेता है और फिर समझ करके बाबा हमारे से उसको, उसका रेस्पॉन्ड बाबा हमको देते और हम भी बाबा की भाषा को कैच कर सकते हैं। तो बाबा ने हम सबको इतनी श्रेष्ठ भाषा सिखाई है और इससे हम सभी बाबा को भी जान सकते हैं, बाबा को पहचान सकते हैं, बाबा का प्यार ले सकते हैं, बाबा की दुआएं ले सकते हैं, बाबा की शक्ति ले सकते हैं। लेते हैं नहीं लेते हैं? सब ले रहे हैं। तो बाबा जो है वो हम सबका एक है और हम सब बाबा के बच्चे हैं। जब बाबा ने सभी विदेश में सेवा के लिए हमारी दादियों को, दीदियों को भेजा था, तो बाबा ने भेजा तो दादियों ने हमारी वहाँ सेवा की, दीदियों ने वहाँ सेवा की, तब बाबा ने कहा कि जब विदेश के भाई बहने आते हैं तो विदेश के भाई बहने जब आते हैं तो देश तो है लेकिन देश के साथ साथ विदेश, और विदेश के सभी आते हैं तो शिव बाबा को क्या कहा जाता? विश्व का बाप है ना? तो विश्व में तो देश विदेश सब आ जाते हैं। तो शिव बाबा को जो टाइटल कब मिला? विश्व का पिता। पहले भारत का था लेकिन जब से विदेश में बाबा की सेवा हुई, विदेशी बच्चे बाबा के निकले, तब से बाबा को कौन सा टाइटल मिला? विश्व का टाइटल, विश्व पिता का टाइटल मिला। और विश्व पिता का टाइटल आप सबने ही बाबा को दिया है, सब बाबा के बच्चे बन गए तो शिव बाबा भी विश्व पिता बन गया। तो विश्व पिता, विश्व का रक्षक, विश्व को पालने वाला, विश्व की सेवा करने वाला, विश्व को बदलने वाला बाबा है। हमारे सत्युग में तो एक ही होगा, हाँ विश्व होगा है? विश्व होगा लेकिन एक ही भारत होगा, हाँ? अलग 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 देश नहीं होंगे, हम सब एक ही जगह पर होंगे। सब बाबा ने सब बच्चों को बाबा ने बुला करके अपने एक ही स्थान पर बिठा दिया है। मुझे एक बाबा की बात याद आती है, दुनिया में एक कहावत कहते हैं कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानवती ने कुनवा जोड़ा। तो ये कहते हैं उसका अर्थ यही है कि बाबा ने क्या किया, सब बच्चों को कहां से उठा उठा करके बाबा ने एक विश्व के बच्चों को एक जगह यहाँ पर अपने घर में इकट्ठा करके हम सबका एक परिवार बनाया। तो हम सभी क्या हैं, बाबा के परिवार के हम सभी आपस में भाई बहन हैं। हम सबका एक बाबा है और हम सब उसके बच्चे एक परिवार के। तो ये हमारा कितना सुंदर दैवी परिवार है, दैवी गुलदस्ता है। दैवी परिवार ये दैवी गुलदस्ता है और गुलदस्ते के अंदर क्या होता है, वैरायटी फूल होते हैं और वैरायटी पत्ते भी होते हैं और उससे ही गुलदस्ता बनता है। अगर वैरायटी नहीं होती है तो शोभता नहीं है, है? एक ही प्रकार के फूल लगा करके अगर गुलदस्ता बनाया जाता है तो उसकी शोभा इतनी नहीं होती है। जितने वैरायटी फूलों की शोभा होती है, वैरायटी पत्तों की शोभा होती है, तो गुलदस्ता शोभनीक लगता है। इसी प्रकार प्यारे बाबा के सभी बच्चे, देश विदेश के सभी बच्चे जब बाबा के बन जाते हैं और एक परिवार में आ जाते हैं तो बाबा का ये गुलदस्ता कितना सुंदर लगता है। जिस गुलदस्ते को देख करके बाबा कितना खुश होता है, होता है ना बाबा खुश, क्या कहता है, वाह मेरे बच्चे वाह। तो हम सभी बाबा के बच्चे कितने भाग्यशाली बच्चे हैं, भाग्यशाली है ना, सभी भाग्यशाली हो हैं? क्यों भाग्यशाली हैं? हैं? क्यों भाग्यशाली हैं? क्योंकि भगवान ने हमको चुन करके अपना बनाया है। चुन चुन के बाबा ने कहां कहां से निकाला है, किस किस कोने में पड़े थे हैं? और बाबा ने उस कोने से हम सबको निकाल करके क्या किया, अपनी माला में पिरो दिया। आप सबने अभी दीपावली मनाई ना, तो दीपावली में क्या करते हैं, दीप माला बनाते हैं। दीप राज शिव बाबा है और उसकी हम सब दीप रानियां हैं, बच्चे हैं और हम सब आत्माओं का बाबा ने दीपक जगाया है और हम सब बाबा की एक एक दीपक हाँ और बाबा की माला में फिरे हुए हैं। तो वो दीप मालाएं जब आप देखेंगे, एक दीपक अच्छा नहीं लगता, जब साथ में अनेक दीपक रखे होते हैं तो कितना सुंदर लगता है। तो बाबा ने भी अपना एक ये सुंदर दैवी परिवार, ईश्वरीय परिवार, अलौकिक परिवार बाबा ने बनाया और ये अनोखा परिवार है और इस अनोखे परिवार का हम सब सुख ले रहे हैं। दुनिया में परिवार का सुख नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर हमको बाबा के बच्चे हम बने, ईश्वरीय परिवार में आए, तो ये ईश्वरीय परिवार का हमको सुख मिला है। ईश्वर का सुख तो है ही, भगवान के हम बच्चे बने वो सुख है ही, लेकिन भगवान ने हमको एक सुंदर दैवी परिवार दिया है और इस परिवार के अंदर जितना सुख है उस सुख को कौन अनुभव करते हैं, जो बाबा के बच्चे बनते हैं। हम सब मधुबन में आते हैं तो मधुबन में हमें क्या मिलता है, बाबा मिलता है और बाबा के साथ साथ दैवी परिवार मिलता है ना। तो ये परिवार कितना सुंदर लगता है, सबको अच्छा लगता है दैवी परिवार हा? तो कितना सुंदर परिवार है और इसकी सुंदरता को हम सभी जानते हैं। तो बाबा हम बच्चों को विशेष यही नशा चढ़ाता है कि तुम सब आत्माएं कितनी भाग्यशाली हो, और भगवान के हम बच्चे बने, भाग्यशाली बने, बाबा ने हम सबको चुन चुन के निकाला और हम बाबा के बन गए, भगवान को हमने पहचान लिया। दुनिया ढूंढ रही है, है भगवान को पाने के लिए दुनिया ढूंढ रही है, भटक रही है, और बाबा ने हम सबको भटकने से बचा दिया, ठिकाना दे दिया, एक ठिकाने पर लगा दिया है। बाबा ने चुन के हमें अपना बना लिया। हम कितने भाग्यवान हैं जो भगवान क्या करता है, भगवान हमारी पालना करता है, भगवान हमें पढ़ाता है, भगवान हमें वर्षा देता है, भगवान हमें भाग्य देता है। तो भाग्यवान हम बच्चे हैं, हमेशा अपने भाग्य को देखते रहो। बाबा हमेशा हम बच्चों को मुरली में कहते, बच्चे सुबह अमृत वेले उठ करके क्या करो, अपने भाग्य का सिमरन करो। सभी अमृत वेले उठ करके बाबा को याद तो करते ही हैं, लेकिन याद के साथ साथ अपने भाग्य का भी सिमरन करें कि भगवान ने हमको कितना भाग्यशाली बनाया है। हम भगवान के बच्चे बने, कितने भाग्यशाली बने, भगवान हमें पढ़ाता है, भगवान हमारी पालना करता है, भगवान हमें और क्या देता है। भक्ति में हम सब गाते थे कि भगवान हम तेरे हैं, है तो तेरे हैं, तो तेरे तो हैं, लेकिन भगवान हमें अभी क्या करता है, भगवान के साथ हम खाते हैं, पीते हैं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से पीऊं, तुम्ही से खेलूं। किसके साथ खेलते हैं, बाबा के साथ। खेलने का मन होता है बाबा के साथ, खाते हैं तो बाबा के साथ, हा? योग करते हैं तो भी बाबा के साथ, बाबा और मैं, दूसरा ना कोई। तो जब बाबा और मैं हैं, तो बाबा की हम बच्चों को बहुत शक्ति मिलती है और बाबा से हम सबको बहुत सुख मिला है। मेरे जीवन का यही अनुभव है कि मैं जब बाबा की बनी तो बाबा को देख करके ही मैंने तो बाबा को साकार में देखा, ब्रह्मा बाबा को देखा, और ब्रह्मा बाबा के होते ही मैं ज्ञान में आई। तो सबसे पहले जब मैं ज्ञान में आई तो मैंने बहनों को देखा। एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के अंदर हम गए थे, बचपन में 13 साल की आयु थी, तो उस समय पर हम प्रोग्राम में गए थे और वहाँ बहनें स्टेज पर बैठी थी, भाषण चल रहा था, बाबा का परिचय दे रहे थे, तो हमको बहनों को देख करके बहुत अच्छा लगा। ये लगा ये फरिश्ते हैं, कितनी अच्छी लाइफ है, कितनी सुंदर लाइफ है, कितनी इनकी अच्छी ड्रेस है, ऐसी आकर्षण है जैसे फरिश्ते हमको दिखाई दिए। तो बस यही दिल में आया, हम भी ऐसा फरिश्ता बने तो। और मैंने उसी दिन से ये फाइनल कर दिया कि जीवन बनानी है तो मुझे ऐसी बनानी है। बस उस दिन से ही हम बाबा की सेवा में लग गए और पढ़ाई भी छोड़ दी, नहीं पढ़ना है अभी, यही पढ़ाई पढ़नी। बाबा हमारा इतनी ऊंची विश्व की पढ़ाई पढ़ा रहा है, इतनी ऊंची पढ़ाई, इस पढ़ाई के आगे कौन सी पढ़ाई है? हमें बाबा क्या बना रहा है, हमारी पढ़ाई है देवता बनने की। उन पढ़ाइयों की एम ऑब्जेक्ट क्या होती है, अलग अलग होती है। कोई डॉक्टर बनता है, कोई बैरिस्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई क्या बनता है, लेकिन ये पढ़ाई तो देवता बनने की पढ़ाई है। तो हमको बस यही है, हमको यही पढ़ाई पढ़नी है, ये सब बेकार है, तो छोड़ दिया और बस बाबा की सेवा में आ गए, मधुबन में आ गए। बाबा को बोला, बाबा अभी तुम्हारे पास ही रहना है, अब बाबा को छोड़कर कहीं भी जाना नहीं है। तो मैं 14 साल की आयु में मधुबन आए, ज्ञान में 66 में आए और मधुबन में 68 में आए। ब्रह्मा बाबा तब थे तो बाबा के पास आए, बाबा के साथ रहे, बाबा से बहुत अच्छी पालना ली, बहुत प्यार पाया, बहुत सुख लिया, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया, बाबा जैसे मेरा सब कुछ था। मुझे कभी अपना घर याद नहीं आया, बाबा ही मेरा है, बस बाबा के पास रहे। तो बाबा ने मुझे जब यज्ञ में आए तो कुछ ना कुछ सेवा तो करनी पड़े ना, तो बाबा ने मुझे सबसे पहले बहुत कहूं कि बहुत अच्छी सेवा दी। क्या सेवा मिली वो मेरा बहुत बड़ा भाग्य था। मुझे बाबा का भोजन बनाने की सेवा मिली, बाबा का खाना बनाने की मुझे सेवा मिली। तो मैं बाबा का खाना बनाती थी और बाबा को प्यार से अपने हाथों से खिलाती।
15 साल की आयु में?
जी जी, छोटी थी उसी समय आई, क्योंकि लगन बहुत थी, इतनी लगन थी, बस बाबा और दूसरा कुछ दिखता ही नहीं था। और बाबा से इतना क्लोज थी, इतना प्यार था। बाबा ऐसे बैठता था तो मैं बाबा के गले में ऐसे हाथ डाल के, जैसे माँ बाप के गले में हाथ डाल के बच्चे खड़े होते हैं, ऐसे मैं बाबा के गले में हाथ डाल के खड़ी होती थी और बाबा भी मुझे बहुत प्यार करता था। तो बाबा के प्यार ने मुझे ब्रह्मा कुमारी बनाई। और फिर मैं जब मधुबन में रही तो मधुबन में बाबा का भोजन बनाया, बाबा को अपने हाथों से खिलाया। 68 में मैं आई थी सितंबर महीने में, और बाबा दिसंबर तक 3 महीने बाबा के साथ मैंने सेवा की और भोजन बनाया। फिर मेरे को सेंटर पर जाना पड़ा तो मैं चली गई। उसके बाद जब बाबा अव्यक्त हुए, अव्यक्त होने के बाद फिर मैं मधुबन में आ गई, और मधुबन में आई तब से ही मैं मधुबन में रही और बाबा की सेवा करती रही। और फिर बाबा ने, दादियों ने मुझे कुछ समय के लिए बॉम्बे भेजा, नेपाल भी भेजा, और सेंटर पर भी सेवा के लिए भेजते रहे। फिर गुजरात भेजा। गुजरात में मुझे भरूच में 48 इयर्स हो गया वहाँ सेवा करते हुए, और वहाँ की सेवा करते करते मुझे मधुबन में यज्ञ में सेवा करने का बहुत चांस हमेशा मिलता रहता था। जब मैंने बाबा से पहली मुलाकात की थी, फर्स्ट, उस मुलाकात में मैंने बाबा को कहा था, बाबा मैं आपके पास ही रहूंगी, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो बाबा ने मुझे कहा, बच्ची अभी तो तुम बहुत छोटी हो, पढ़ाई करो। तो मैंने कहा, बाबा पढ़ाई के लिए आप कहते हो और आप मुरली में भी कहते हैं विनाश हो जाएगा, जो करना है वो कर लो। तो मैंने सामने से ही बाबा को कहा, बाबा आप कहते हो विनाश हो जाएगा, अगर मैं पढ़ने जाएंगी और विनाश हो गया तो मैं ये पढ़ाई कब करूंगी। तो बाबा हंसे, और हंस करके बाबा ने कहा, बच्ची बाबा तुम्हारे लिए विनाश रोक लेगा। ये बाबा ने कहा, विनाश रोक लेगा। फिर मेरे को बाबा ने 1 साल के लिए भेज दिया। फिर मैंने पढ़ाई की, हाई स्कूल किया और बाबा के पास आई। तो बाबा के पास आई, आने के बाद बाबा मेरे को कहा, बाबा मैं तो अब सेवा में आ गई, अभी मैं आपके पास ही रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। तो बाबा ने कहा, बच्ची भले। फिर बाबा ने मेरे को कहा, बच्ची तुम सेंटर पर रहेंगी ना? मैं कहा, जी बाबा। तो कहा, तेरे को टोली बनानी आती है? तो मैंने कहा, बाबा ऐसे थोड़ा थोड़ा खाना बनाना आता है, टोली नहीं आती है। तो कहा, तुम अगर टोली नहीं बनाएंगी तो सेंटर पर जाएंगी तो जो बाबा के बच्चे आएंगे उनको टोली क्या खिलाएंगी? तो मैंने कहा, बाबा मैं टोली बनाना सीख लूंगी। तो बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है। फिर मैंने, बाबा ने ये कहा और मैंने टोली बनाना सीखा, और इतना सीखा कि आज ऐसी कोई टोली नहीं है जो मुझे बनानी नहीं आती। और सीखा और बाबा को भी खिलाया और यज्ञ में भी दिया, और जिसके कारण ही मैं मधुबन में विशेष भंडारे की सेवा के लिए हमेशा यहाँ आती रही और दादियों के साथ विशेष मधुबन में जो भी प्रोग्राम्स होते थे, बाबा की सीजन होती थी, उसके लिए दादियां मेरे को सेवा के लिए हमेशा यहाँ बुलाते थे। मैं 6 मास मधुबन रहती थी और 6 मास भरूच रहती थी। ऐसे सेवा करती रही और सेवा करते करते आज बाबा ने मुझे ज्ञान सरोवर में बुला लिया। ऐसे ही नहीं बुला लिया, बाबा ने आना जाना करते रहे, फिर बाबा ने आज ज्ञान सरोवर की ड्यूटी मुझे विशेष दी, क्योंकि बाबा का ये वरदान था। हमेशा शुरू से ही बाबा के प्रति मेरा बहुत प्यार रहा, जितना प्यार था आज भी है, वही निश्चय पहले था, वही निश्चय आज है, और आज भी हम उसी अनुसार, बाबा के अनुसार चल रहे हैं। तो चलने से जीवन जैसे बहुत हल्का लगता है। बाबा कहते हैं, जो भी कार्य करते हो तो करते हुए हमेशा यही समझो कि करण करावनहार बाबा है और हम सब क्या है, बाबा के स्टूडेंट है। तो बाबा हमारे से करा रहा है और हम कर रहे हैं, तो उससे हम बहुत हल्के रहते हैं, हल्के भी रहते हैं और बाबा की याद भी रहती है। तो हमारी जो डोरी है वो बाबा को दे दो। एक गेम होता है कठपुतली का, आप सबने देखा होगा, उसको ऐसे नचाते हैं तो उसकी जो डोरी होती है वो उस नचाने वाले के हाथ में होती है, तो वो डोरी से जैसे नचाता है वैसे नाचते हैं और खुशी में झूमती है। तो ऐसे हमारी भी डोरी शिव बाबा के हाथ में दे दो, शिव बाबा जैसे हम सबको नचाए वैसे हम सबको नाचता है, तो हम जीवन में बहुत हल्के रहते। कोई भी कार्य करते हुए कभी भी हमको ऐसा नहीं लगेगा ये कार्य बड़ा मुश्किल है, हम नहीं कर सकते हैं, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, नहीं, बाबा हमारा कराने वाला है और बाबा हमारे हमको कराता है, तो हम हर रीति से, सहज रीति से बाबा का हर कार्य कर सकते, क्योंकि बाबा तो जनरेटर है, हम सब उसकी बैटरी हैं, उससे कनेक्शन हमारा जुड़ा हुआ है, तो बैटरी तो चार्ज रहेगी ना, और चार्ज बैटरी क्या करेगी, फुल चलेगी। अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो उसको धक्का मारना पड़ेगा। तो अपनी बैटरी को हमेशा हमें फुल चार्ज रखना है, तो बाबा जनरेटर के साथ में कनेक्शन रखना है, उससे हमारा कनेक्शन है तो हमारी बैटरी फुल चार्ज रहेगी। हमारी दादियों का भी यही अनुभव रहा, हमेशा दादियां कहती थी हम नहीं करते, बाबा कराता है, करण करावनहार बाबा है, बाबा का कार्य है, बाबा करा रहा है, हम बाबा की सब बुझाएं हैं। है? कहते हैं ना, भगवान को 1000 बुझाएं हैं, ब्रह्मा को भी 1000 बुझाएं दिखाते हैं, तो भगवान की हम सभी क्या हैं, बच्चे तो हैं लेकिन बाबा की बुझाएं हैं, और बुझाएं भी कौन से, राइट हैंड है, सभी राइट हैंड है ना, बाबा के हम सभी राइट हैंड है, भगवान ने हमको राइट हैंड बनाया अपना, तो राइट हैंड से हमेशा क्या होता है, कोई भी श्रेष्ठ कार्य करना होता है तो राइट हैंड से किया जाता है। तो हम बाबा के श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बने और भगवान ने हमको अपना राइट हैंड बनाया, सपूत बच्चे बनाया, तो हम बाबा के सपूत राइट हैंड बच्चे हैं। इसी नशे में अगर हम चलेंगे तो हर कार्य सहज हो जाएगा और हमेशा जो भी कराता है बाबा कराता है और हम बाबा के बच्चे हैं, करण करावनहार बाबा है, हम कर रहे हैं, तो कोई भी कार्य हमें मुश्किल नहीं लगेगा। बस बाबा कहता बच्चे बाबा बाबा करते रहो और अपने जीवन की गाड़ी को चलाते रहो। ओम शांति।
ओम शांति दीदी, बहुत अच्छा लगा आपकी कहानी सुन के। तो हम जब आएंगे ज्ञान सरोवर तो हम, आप हमको अच्छी अच्छी टोलियां खिलाओगे ना?
जरूर 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 खिलाएंगे।
So do you have any questions for Didi? Anyone can come and ask a question about Didi's life, about being with Baba. Yes, one question at the back.
Om Shanti. Didi ji, वो कर्मतीत स्टेज जो बाबा का था, आप उसको कैसे फील किया? How did you feel Baba's कर्मतीत स्टेज and what was your impression and how can you describe it? What was your feelings? How could you understand it?
बाबा की जो कर्मतीत स्टेज थी तो एक तो बाबा का जो था ना फरिश्ता स्वरूप लगता था. बाबा एकदम हल्का और एकदम न्यारा स्वीट लगता था. इतना बाबा प्यारा लगता था और एकदम बाबा हल्के थे, उड़ते रहते थे बाबा. और इतना बाबा प्यार देता था कि बात नहीं पूछूं. जैसे एक चुंबक होती है ना तो उसमें चिपक जाता है, ऐसे कोई भी बाबा का बच्चा उस बाबा के अंदर जैसे चिपक जाता था. और एकदम हल्कापन लगता और बाबा हमेशा न्यारा, बाबा की याद में मस्त रहता था. बाबा को ना एक मस्ती बहुत थी, मैं बाबा का बच्चा हूँ, वो मस्ती एक अलौकिक और रूहानी लगती थी. जैसे दादियों की भी नहीं लगती थी, बाबा 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 ऐसे ही ब्रह्मा बाबा 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 करता था, बाबा कहता. तो बाबा एकदम हल्का लगता था और बहुत प्यारा लग, बाबा का इतना प्यार था. वो जैसे कहता है ना बाबा मैं प्यार का सागर हूँ, तो शिव बाबा तो प्यार का सागर है, लेकिन शिव बाबा ने प्यार जो है ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम सबको दिखाया. हर बच्चे के अंदर बस बाबा का प्यार हर एक को मिलता था. बड़ा प्यार से बाबा बात करते थे, प्यार से बैठते थे, प्यार से सुनते थे, प्यार देते थे, प्यार से खिलाते थे, प्यार से संभालते थे. हर बच्चे को हाथ घुमाकर, बच्चे कैसे हो, ठीक हो, तो एक रूहानियत का अनुभव था, एक अलौकिकपन लगता था. जैसे लौकिक में मिलते हैं तो वो अलग भासना होती है, लेकिन बाबा से एक अलौकिक भासना होती थी, न्यारापन लगता था, सुख मिलता था. जैसे कहते हैं ना अंदर में सुख की फीलिंग होती, वो इतना निस्वार्थ बाबा का प्यार था ना, वो प्यार हमको एक सुख देता था, बहुत अलौकिक लगता था.
दीदी, बाबा ने कभी आपको थोड़ा सा ऐसे कान खींचवाए होंगे, डांटा होगा, कुछ आपने गलती की होगी?
नहीं नहीं नहीं, कभी कोई गलती नहीं, कोई डांटा नहीं, कभी बाबा डांटते नहीं थे. वैसे भी हम हिस्ट्री में सुनते हैं तो बाबा कभी किसी बच्चे को डांटता नहीं था. बहुत युक्ति से कोई भी बात, बच्चे की कोई गलती हो जाती थी तो बाबा बड़ी युक्ति से समझाते थे, बच्चे ऐसे नहीं, ऐसे करो. डांटना तो बाबा के पास था ही नहीं, प्यार का सागर वो प्यार ही देता, डांट का सागर नहीं था, वो प्यार बांटता था और सब बच्चों को प्यार से. ऐसा बाबा प्यार देता था जो सामने वाला वहीं पिघल जाएगा, अपनी भूल को कबूल कर लेगा. ये थी.
एनीवन एल्स क्वेश्चन?
ओम शांति दीदी, आई कैन फील दैट योर लव टुवर्ड बाबा इज वेरी बिग एंड I can see it in your eyes, I can feel it in your words. But as a foreigner, I want to have that kind of feeling toward Baba, like that kind of big love. But my culture is not like similar to like Indian, but how can I have that kind of love, big love toward Baba?
आपके शब्दों से, आपकी आंखों से हमको बाबा के प्रति आपका कितना प्यार है फील होता है. पर हम डबल फॉरेनर है तो कैसे ये दिल में बाबा के प्रति प्यार पैदा करे, उत्पन्न करे?
देखो बाबा हमारा, हम ये कहेंगे हमने तो बाबा को साकार में देखा, लेकिन जब हम बाबा के फोटो के सामने जाकर के बैठते हैं तो हमें कभी भी ये फीलिंग नहीं आती है कि बाबा यहाँ नहीं है। बाबा के सामने बैठो आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे बाबा हमको साकार में हमसे बात कर रहे हैं। कोई भी बात लेकर के हम बाबा के पास जाते हैं और उस बात को बाबा इतना प्यार से सुनता है और प्यार से बाबा की आंखों से ही हमको उसका जवाब मिलता है। तो आप भी जब बाबा गया नहीं है, बाबा तो यहाँ ही है। देखो भले शरीर तन नहीं है लेकिन शिव बाबा तो यहाँ है ना। शिव बाबा आया, शिव बाबा ने ये ब्रह्मा बाबा का तो रथ लिया था और उस रथ से बाबा कार्य कराता, लेकिन अभी भी बाबा तो यहाँ हाजिर है ना। हम सभी क्या अनुभव करते हैं, मधुबन आते हैं तो हमको क्या फीलिंग आती है कि बाबा यहाँ ही है, बाबा से मिलते हैं। जब बाबा मिलन होता है तभी हम भले बाबा का फोटो देखते हैं, उर्ली सुनते हैं, लेकिन हमको कभी ये फीलिंग नहीं आती है कि हम बाबा की रिवाइज मुरली सुने। यही फीलिंग आती है कि बाबा हमसे जैसे मिल रहा है। तो बाबा तो यहाँ है ही, बाबा गया नहीं है। आपको बाबा से बातें करनी है, बाबा के फोटो के जाके आगे बैठो और बाबा से आप जो बातें करेंगे बाबा आपका उस बात का रिटर्न जवाब देगा। ये मेरा अनुभव। अभी भी हम जाते बाबा से बात करते, बाबा ऐसे, बाबा ऐसे, बाबा हर बात का हमको जवाब देता है। वतन में कौन सी भाषा है, वतन के अंदर हमारे दादी वतन में जाती कौन सी भाषा, वहाँ मुख्य भाषा नहीं है, वतन में इशारों की भाषा है ना। तो यहाँ भी बाबा के पास हम बैठेंगे, बाबा वो इशारा देगा, हम बाबा की बात को कैच कर सकेंगे। बाबा नहीं है ऐसा नहीं, बाबा है। हम बच्चों का बाप है, हमारे लिए आया है, हमको ले जाएगा। बाबा हमारे साथ है, बाबा हमारे साथ है। तो साथ का अनुभव हम करेंगे।
ओके। इन दिस मॉर्निंग्स मर्ली बाबा वाज सेइंग दैट doesn't matter how much you decorate some souls with knowledge, they still get attracted to the world. Then later he said, it's important to keep the faith that in the end, through faith in Baba, there will be victory over Maya. So we leave Maya and Baba will win in the end. So this sometimes can give an opposite understanding, because you think, oh, it's okay, Baba's got my back, in the end I'll have victory, Baba will all be good in the end. And then so there is some slackness that comes.
Kabhi kabhi Baba kehte hain ki kai bacche hain ki jitna marzi aap gyan sunao फिर भी वो दुनिया के आकर्षण में चले जाएंगे, माया में चले जाएंगे। तो कहती है कि कभी कभी बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, पर उसमें फिर थोड़ा अलबेलापन भी आ जाता है कि अंत में चलो बाबा ले जाएगा, पर अब भी थोड़ा सा फिर अलबेलापन आ जाता है। तो उसको कैसे हम मैनेज करें,
उसके लिए आज भी बाबा ने हम बच्चों को मुरली के अंदर कहा कि हम जितना जितना बाबा की मुरली को रोज सुनते रहते हैं, ज्ञान को धारण करते रहते हैं, अपने पुरुषार्थ के ऊपर हमें अटेंशन रहता है, तो रेगुलरिटी जितना रहती है ना उतनी हमारी बुद्धि को भोजन मिलता है। कई बार क्या होता है, देखो जैसे शरीर को हम खाना रोज नहीं देते हैं तो ताकत नहीं होती है, तो टांगे लड़खड़ाने लगती है, होता है ना ऐसे। ऐसे ही अगर हम ज्ञान का भोजन रोज बुद्धि को देते रहेंगे ना, रोज सुनते रहेंगे, तो अलबेलापन नहीं आता है। और नहीं सुनते हैं ना तभी अलबेलापन आता है। इसीलिए आज मुरली क्लास क्यों रखा गया है, अमृत वेला बाबा से मुलाकात करते हैं तो पुरुषार्थ ढीला नहीं होता है। तो इसीलिए जो हमारी दिनचर्या रूटीन बना हुआ है, अगर हम उस दिनचर्या को पालन करते हुए चलते रहते हैं तो कभी भी थोड़ा निश्चय में डाउट नहीं आएगा। कहीं कोई भी बात आती है ना तो क्या होता है, जब ताकत नहीं होती है तो उस बात को हम फेस नहीं कर पाते, और अगर हमारे पास ताकत होती, कोई भी बात आई, कोई बाबा की मुरली की हम पॉइंट याद कर लेते, मुरली में रोज की मुरली में बाबा कुछ ना कुछ हमको रोज पॉइंट देते हैं, और वो पॉइंट अगर हमारी बुद्धि के अंदर होती है तो जब हमारे सामने कोई भी बात आती है तो हम उसको फेस कर सकते हैं, और जब फेस कर सकते हैं तो हम अपने पुरुषार्थ को ढीला नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें रोज बाबा की मुरली को रेगुलर सुनना चाहिए, पढ़ाई रोज पढ़नी चाहिए, तो अटेंशन जितना रहेगा तो कभी भी ढीले नहीं होंगे, और बाबा हमारे साथ में है।
Can Didi stop the joy?
Destruction.
Yes. For me to going on study.
क्या आप हम विनाश को रोक सकते हैं?
Can you stop the destruction for us to study?
क्या हमको पढ़ना है, आगे पढ़ना है, हम लेट आए हैं, तो थोड़ा सा विनाश को अब रोक के रख सकते हैं।
देखो, विनाश को रोकना न रोकना, लेकिन अभी जो हमें समय मिला है, इस समय भी हम पुरुषार्थ करके लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं। जो भी समय मिला है उस समय के अंदर हम एक एक सेकंड को अभी अगर हम सफल कर लेंगे तो हमें हम पुरुषार्थ कर सकते, क्योंकि आप सबको जो आज जैसे बाबा ने मुरली में सुना है ना कि मैंने आप सबको मक्खन दिया है, छाछ नहीं दिया है, आपको ज्ञान का मक्खन मिला है, तो मक्खन तो तैयार मिला है, और वो तैयार खा लेंगे तो तुरंत ही एनर्जी आ जाएगी। इसलिए हम पुरुषार्थ कर सकते अगर विनाश रुके या नहीं रुके, लेकिन जितना भी समय है बाबा ने हमें जो विधि सुनाई उस अनुसार अगर हम चलते रहेंगे तो हमारा पुरुषार्थ श्रेष्ठ हो जाएगा। आज देखो 80-88 साल से भी पुरुषार्थ करने वाले पुरुषार्थ नहीं कर पाए, और हम जो लास्ट में पुरुषार्थ करके फास्ट जा सकते, ये बाबा का वरदान है। तो आपको जो समय मिला है उस समय में ही हम पुरुषार्थ कर लेंगे तो विनाश रुके या न रुके, विनाश हो या न हो, हमें ये नहीं सोचना है, जो बाबा ने हमें कहा है बस उस अनुसार हम अब करते चलें, एक एक सेकंड को सफल करते चलें और आगे बढ़ते चलें तो हम पुरुषार्थ कर लेंगे, संपन्न बन जाएंगे। ऐसे जरूरी नहीं है कि 80 साल पुरुषार्थ करने पढ़ाई करने के बाद ही देवता बनेंगे, देवता तो सेकंड में बनना है। भगवान ने पढ़ाई ऐसी पढ़ाई है, हाँ क्या बनना है, सेकंड में देवता, तो सेकंड में बनना है, सेकंड पुरुषार्थ करेंगे देवता बन जाएंगे।
ठीक है, ओके एवरीबॉडी, संतुष्ट, यू कंटेंट, यस गुड। प्रभा दीदी, हम बहुत लकी फील करते हैं कि पूरे डबल फॉरेनर्स में से हम ही पहले आपसे मिले।
जी जी, मैंने पहली बार ही फॉरेनर्स का क्लास कराया।
दिस इज माई फर्स्ट क्लास फॉर डबल फॉरेनर्स,
क्योंकि मैंने कभी कराया नहीं, हिंदी में तो कराती हूँ लेकिन डबल फॉरेनर्स का मैं फर्स्ट टाइम क्लास कराया।
So I do lots of classes in Hindi, but first time for the foreigners. दीदी आप कराते रहे,
जरूर कराएंगे, अभी तो आ गए तो
कराएंगे। So we'd love you to continue to meet us and you know keep giving us sharing your experiences. तो हम सब की तरफ से दीदी बहुत बहुत थैंक्स आपको, एंड वी फील सो हैप्पी दैट वी नो दीदी नाउ। हमको लगता है जैसे हम आपसे अभी मिले हैं, बहुत अच्छा लगा
जी।
तो जब भी आएंगे तो जैसे आपके पास आते रहेंगे।
जरूर जरूर जरूर,
ओके
ओके,
सो थैंक यू एवरीबॉडी एंड ओम शांति।